اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023، ڈی کیو 2023. آج ہم اس میں شروع کریں گے سورۃ طہٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے صورتوں کو بدل بدل کر لاتے ہیں، کبھی مکی صورت ہے تو کبھی مدنی صورت ہے. ہم 16th پارہ جس تھیم پہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پچھلی نشست پر بیٹھنے پر راضی ہونا. ہم سورۃ طہٰ میں دیکھیں گے کہ ان کے سسر نے شرائط میں دو چوائسیز دی تھیں کہ 8 سال تک تم میرے پاس رہو تو یہ تو مسٹ ہے، ہاں اگر تم ایکسٹرا کچھ وقت لگا لو تو 10 سال کر دینا پورے. حضرت موسیٰ کے پاس پوری چوائس تھی کہ وہ داماد ہونے کا حق حاصل کرتے اور پھر اس کو خوب مس یوز کرتے کچھ دامادوں کی طرح، لیکن آپ نے پچھلی نشست پہ بیٹھنے کا ارادہ کیسے کر لیا؟ 8 کی بجائے 10 سال لگائے. کیا فائدہ ہوا موسیٰ کو آپ کو پتہ؟ اگر 8 سال کے بعد واپسی کا راستہ لیتے، جو انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے، اور صورت طہٰ جو ہے نا وہ تقریباً آدھی سے زیادہ صورت حضرت موسیٰ کی سیرت ہے. ہم حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہونے والے ڈفرینٹ واقعات کو ترتیب زمانی سے پڑھنے لگے ہیں. کچھ باتیں ادھر کلیئر ہوں گی تو کچھ آ کے صورت قصص میں بھی ہو جائیں گی. لیکن حضرت موسیٰ نے 10 سال لگا کر خود کو بہت سیکیور کیا. کیسے؟ اس دور میں مصر کے قانون کے مطابق قتل کے مقدمات 10 سال کے بعد ختم ہو جاتے تھے. آج بھی امریکہ میں کچھ چیزیں 10 سال کے بعد وہ قلم پھیر دو والی کیفیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اگر 2 سال پہلے آتے تو ہو سکتا ہے پھر جیل میں جاتے. تو لکھیے، پچھلی نشست پر بیٹھنے پر راضی رہنے والوں کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ کو ہم نے اس شخصیت میں دیکھا، اور ان کی کیفیات کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے کہ ہر مرد کا دل کرتا ہے میں خوب سے خوب کماؤں اور پھر اپنے بچوں اور بیوی کو لے کر سکھ چین کی بانسری بجاؤں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنا بہت سارا وقت دین کو دیا، شادی نہ کی اس غم میں کہ کہیں اس میں پڑھ کر اللہ کے نبی کی معیت میں کمی نہ آ جائے. تو کیا اس پچھلی نشست پہ رہنا ان کو نقصان دیا؟ نہیں، اللہ نے ان کو سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے لوگوں میں شامل کیا. تو آئیے ذرا انہی فیلنگز کے ساتھ سورۃ طہٰ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طہٰ 135 آیتیں ہیں اس میں، اور ترتیب سے 20 نمبر کی سورہ ہے، اور حروف مقطعات پہ جو سورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک سورت ہے. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. پہلی 24 آیات 1 سے 24، اس کا ٹاپک لکھیے قرآن ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے. اور آپ کے میرے لیے بالکل ٹاپ موسٹ اوپر پہ پہنچنے کے بعد یہ بات سننا اور بھی تسلی دے رہا ہے کہ اس قرآن کو ایز اے ریمائنڈر اپنے نوٹس میں، اپنی کتابوں میں، اپنے فونز میں سیو کر لو تاکہ وقت پڑھنے پہ تمہیں اس سے فائدہ ہو. تو ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے، یعنی مٹی کی تہوں میں دبا ہوا دانا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں آپ کا پروردگار ہوں، آپ جوتیاں اتار دیں کیونکہ آپ تو پاک میدان طوا میں ہیں اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنیے. बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। ज़रा महसूस कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की क्या कैफियत हुई होगी। मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो इसने कोशिश की हो। नोट कीजिएगा, कोशिशों का बदला है, नतायज का नहीं। बस अब इसके यकीन से तुझे कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो, अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ऐ मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? आप देख रहे हैं कि बीच में तरह जुमले हैं, कहानी चल रही है तो बीच में एक छोटी सी बात, इसको तरह जुमला कहते हैं, यानी वो जिसका पिछले और अगले कॉन्टेक्स्ट से ताल्लुक नहीं होता। और अमूमन कहानी में ये अंदाज़ क्यों इख्तियार किया जाता है? ताकि अगले की तवज्जो बन रहे। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो अब एकदम अलर्ट हो जाएंगे। तो ये अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत है स्टोरी टेलिंग में। जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी इसमें मुझे बहुत से फ़ायदे हैं। मूसा बात बढ़ा रहे हैं, जिससे मोहब्बत होती है ना उसे बंदा मुख्तसर सी बात नहीं करता, वो एक बात पूछे आप दो पूछ लेते हैं। तो क्या आपका मेरा नमाज में ये ताल्लुक़ है अल्लाह से? लंबी सूरतें और बातें और दुआएं कि कहीं कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए और मैं अल्लाह से अपने दिल की बातें करने से रह ना जाऊं। फरमाया, ए मूसा, इसे हाथ से नीचे निकाल दो। डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर उसे पकड़ लो, हम इसे पहली सी सूरत में दोबारा ला देंगे। सोचिए, चलो पहली दफ़ा तो डाल दिया, लेकिन जब सांप बन गई तो दोबारा पकड़ना आसान काम है। आगे आ रहा है ये टेस्ट, पकड़ो इसको हल्के हाँ खुश हाँ, जिसमें फ़ायदे हैं उसको फेंक दो, जो सांप लग रहा है उसको पकड़ लो। ये है इताअत, ये है पिछली नशीस पे बैठना। हम अल्लाह के हुक्मों में भी अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कर रहे होते हैं। तो मूसा का ये बड़ा सख्त इम्तिहान, और रात का वक्त अंधेरा और असली सांप दिख रहा है, मेरा नकली सांप भी नहीं बंदा देख सकता। खिलौना है, साफ लग रहा है, लेकिन अल्लाह ने ऐसी दहशत रखी है सांप की कि इंसान पकड़ के ना दे। लेकिन मूसा को क्या, पकड़िए इसको और अपना हाथ बगल में डाल लीजिए, वो सफ़ेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बग़ैर किसी ऐब और रोक के। ये दूसरा मोजज़ा है, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन के पास जा, इसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। क्या पता चला कि कुरान अल्लाह ने नबी को दिया? मानजल नहीं उतारा हमने ये कुरान, क्यों? लितशका। इस आयत के बारे में इब्ने कसीर में रिवायत है इब्ने अब्बास से कि जब पहली बार अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई तो आप नमाज के लिए जिस वक्त खड़े होते तो बहुत देर खड़े रहते, यानी लंबा क्याम करते। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाजिल फरमाई, यानी हमने कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ उठाएं। इसके बावजूद नबी सल्लम का क्या हाल था, ये हम सब जानते हैं। सीना हंडिया की तरह खोलता था। आजकल तरावी में एक पारा किसको लंबा लगता है, किसको छोटा? कौन एक पाँव पे फिर दूसरी पे, और कौन उस तरावी में जाता है जहाँ मौलवी साहब जल्दी से पढ़ लेते हैं तेज़, क्योंकि मकसद ही पारा पूरा करना है। तो फिर कौन लंबा सुने और कौन आहिस्ता और स्लो कारी की आवाज़ सुने? अपने लिए भी सवाल लिखिए, क्या कुरान की महफिल में मैं मुश्किल में तो नहीं पड़ी होती कि कब ख़त्म होगा? फिर आप देखिए कि आयत 14 में नमाज का असल मकसद अल्लाह की याद और अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ना ये रखा गया। अपनी हर नमाज पे अपना मुहासबा करेंगे हम भी कि क्या मुझे इस नमाज में अल्लाह याद आता है? हमें अल्लाह तो क्या याद आएगा, हमें तो ये नहीं याद रहता कि रकतें कितनी पढ़ी, सूरत कौन सी पढ़ी। तो आज से नमाज के अंदर इस सोच को रखिएगा, और क्या नमाज में मेरा अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक जुड़ता है? वाईफाई के सिग्नल लूज़ होते हैं ना, तो आवाज़ कभी आती है और कभी जाती है और मज़ा नहीं आता। यहाँ बैठों को नहीं इसका अंदाज़ा होगा, घर से सुनने वाले इसका मुशाहिदा करते हैं। कभी कभी जहर मशीनें हैं, आपके मेरे इख्तियार में थोड़ी है, फ्लक्चुएशन तो होती है। और यहाँ बैठे हुए भी बंदे अपने मेंटल वाईफाई के लूज़ होने पे पता नहीं कहाँ पहुँच जाएँ, तो यहाँ वाले भी नहीं सुनेंगे। लेकिन नमाज में क्या कैफियत है? क्या हमारी नमाजें ऑटोमेशन पे तो नहीं लगी हुई? फातिहा से शुरू होती है और जाके समय अल्लाहु लिमन हमिदा पे रुकी, चलो एक हो गई, नहीं तवज्जो देनी है। तो क्या पता चला इस पूरे लेसन में आपने अभी तक जो देखा है, अल्लाह की बंदगी करनी है, गैब पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है इस बात को मानिए, अल्लाह ताला को एक मानना और इसकी सिफात का यकीन रखना है, और अल्लाह ताला के पैगाम को सुनना है, अल्लाह ताला की याद के लिए नमाज़ कायम करनी है, और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी। आप देखिए कि कुरान पढ़ने के बाद जो बंदे के दिल की कैफियत होनी चाहिए ना, ये सूरह तौहा में आपको दिखेगी। बास तो कहते हैं कि ये जन्नत के अंदर भी पढ़ी जाएगी, और बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों पे भी इसको पढ़ा, और उन्होंने कहा कि वो कौन सी ज़ुबानें होंगी जो इसको पढ़ेंगी और कौन से दिल दिमाग होंगे जो महसूस करेंगे। ये रिवायत है, एक ज़ईफ़ हो सकती है, लेकिन अगर आप और मैं सोचें कि इस वक्त तो मैं आप और यही कुरान पढ़ रहा हूँ, कितनी खुशबख्ती है कि अल्लाह ने हमारे हाथ में कुरान दिया। और इसके बाद अब आगे रुकू नंबर 2, 25 से 54, 25 से 54 है, और इसका टॉपिक क्या है, अल्लाह के एहसान। और शुरू किससे हो रही है, दुआ से। कौन सी, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। موسی علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ کیسے کھول دے؟ اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کیا پتہ چلا کہ داعی دین کو اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے بات کرنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ شوہر سے کوئی بات منوانی ہے، یہ پڑھ لے، کیونکہ ان کو آپ کی اکثر باتیں نہیں سمجھ آتی۔ رب اشرح لی پڑھ کے اپنے شوہر سے عید کے جوڑے کی فرمائش کیجئے گا، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی بیگم، آپ کو ہو کیا گیا؟ تو آپ کہیں گے لی یفقہو قولی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس وظیفے سے آپ کا عید کا جوڑا بہت اچھا بنے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرا بھائی ہارون، اس کو تو اس سے میری کمر کس دے، یعنی بھائی ساتھ مل جائے نا تو کمر مضبوط ہو جاتی ہے، اور اسے میرا شریک کار کر دے۔ دل کھلا تھا تبھی موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آہا ہا میں نبی ہوں اور تم میرے سے نیچے ہو، بلکہ اچھے بھائی بہن ایک دوسرے کو نعمتوں میں شریک کر لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اکیلا 2 11، کام بٹ جاتا ہے نا اور نتائج زیادہ اچھے ہونے لگتے ہیں۔ اور بکثرت تیری یاد کرے، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی مانگو جو مانگتے ہو سب دیا جائے گا والی کیفیت۔ ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ دا موسٹ بیوٹیفل پارٹ آف دس سورت توہ، اس میں ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں اور رشتوں کی مٹھاس بھی ہے، اور سب سے بڑی بات حضرت موسیٰ کی ماں کا توکل۔ کیا حکم ہوا؟ الہام کیا جا رہا ہے کیا؟ کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے پر لا ڈالے گا، اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ یہ ہے نصیب، سب کو محبت نہیں ملتی، یہ بھی نصیب ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے گھروں میں 10 بچے ہوں گے، کوئی ایک آنکھوں کا تارا ہوگا، کوئی ضروری نہیں بڑا خوبصورت ہو، حسین ہو، موٹی آنکھیں، گورا رنگ۔ کچھ بچے خوبصورت اس طرح ہوتے ہیں کہ کشش بہت ہوتی ہے، کالے رنگ کے بچے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، اور کئی گورے بھی بس بڑے پکے پکے سے بچے لگتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ جو محبتیں ہمیں ملتی ہیں نا بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک، یہ بھی نصیب ہے۔ بما رزق نام ينفقون، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت دلوں میں ڈال دی تھی۔ یاد کرو جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ ماں پچھلی نشست پہ بیٹھنے پہ راضی تھی، آج کی موت ہی تو کوسچن آنسر سیشن شروع ہو جاتا۔ ہائے اللہ، میرا بچہ، اللہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، وہ ڈوب جائے گا۔ آج مائیں بیبی سٹنگ ایریے میں نہیں بچے کو ڈالتی۔ موسیٰ کی ماں دیکھیے کہ سمندر اور دریاؤں کی لہروں میں ڈال گئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ واپس کچھ دن کے بعد موسیٰ کے گھر میں۔ موسیٰ نے تو شور مچا دیا جا کر محل میں، آگے ہم قصہ پڑھیں گے سورہ قصص میں۔ موسیٰ نے شروع کر دیا رونا دھونا، بالآخر پھر وہ بہن نے فرمائش کی۔ کہانی اب سب کو آتی ہے، میں نہیں گمان کرتی کہ آپ کو نہیں پتا، اور ترجمے سے بھی واضح ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایک عورت ہے، اس کو میں جانتی ہوں، طریقے سے سلیقے سے بات کی۔ اور یہاں سے بہن کا کردار بھی دیکھیے، یہاں موسیٰ کی بہن موسیٰ کو کس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ موسیٰ قتل بھی نہ کیے جائیں، ان کو دودھ بھی مل جائے اور واپس بھی آ جائے ماں کے پاس۔ اور ادھر حضرت عمر کی بہن ان کے اسلام اور ایمان لانے کا کام کرتی ہے، تو آج خاص طور پہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو نیکیوں میں بڑھائے، سکون دے، اطمینان دے، खुशियाँ दे और ज़िंदगी का असल मकसद समझा दे। सिर्फ रोज़ी रोटी ही नहीं, सबसे बड़ा मकसद बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी कंपनी और उनकी जज्बाती ज़रूरियात को भी पूरा करना है। तो यहाँ भाई बहन का रिश्ता इसकी मिठास है। जो हमारा रिश्तों का टॉपिक था 2019 में, उसमें इस बारे में हमने सिबलिंग्स रिलेशंस देखे थे, भाई और बहन के। इस पे देखे होंगे या सूरत कसस में। तो बहरहाल ये कि ये रिश्ते बड़े मीठे होते हैं, आप एक दूसरे के दुनिया के भी दुख सुख बांटें, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो आखिरत का है, उसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी माँ का दूध पी लिया, तब क्या हुआ? वो औरत फिरौन की मजबूरी बन गई। ज़ाहिर है, क्या फिरौन ने अपनी बेगम की फरमाइश भी पूरी करनी थी? इससे पता चलता है, चाहे फिरौन ही क्यों ना हो, बेगम की फरमाइशें पूरी करने में मर्द बेचारे मजबूर होते हैं। आप कहने लगा कि ऐ बूढ़ी औरत, तू इधर ही रह। नहीं, मेरे तो बच्चे का, उनको भी दिया। कहेंगे मैं नहीं लाती, तेरी ज़रूरत है, देना है तो दे दे मुझे बच्चा। और इस तरह सुमर जाना का मूसा वापस उसी झोंपड़ी में आ गए। फिरौन के घर से उसके फूड कंटेनर, उसके खिलौने, उसका ड्राई मिल्क और उसकी ABC DC, जो आज के पैम्पर शैम्पर है, वो सब इतना आने लग गया कि उसके बाकी भाई बहन भी पल गए। इस पे अल्लाह के नबी ने कहा था कि मोमिन की मिसाल तो मैं मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी ले। आज किधर मिलती है माँ को उजरत? बेचारी दूध भी पिला रही हैं और ससुराल में काम भी कर रही हैं। हम है कि मैं एक दिन आकर थोड़ा सुकून मिल जाए तो और बात है। मूसा की माँ का ये किरदार अल्लाह का एक मोमिन के साथ ताल्लुक़ उसको दिखाता है। अगर मूसा की माँ पिछली नशिस्त पे बैठने पर राज़ी ना होती, तो क्या ये सारे लाड और चौ देखे जाते? तो जब आप किसी की मजबूरी हो ना, तो फिर आप उससे अपनी कीमत वसूल कीजिए। आप माशाल्लाह ख़वातीन हैं, आपने कई साल से अपने घरों को देखा हुआ है। अब आप अपने शौहरों की मजबूरी हैं, आप अपने बच्चों की मजबूरी हैं, तो आप इतनी छोटी छोटी बातों पे कि वो आपके दीन में दखल दे, ये है तो आप उनको अपनी ज़रूरत का फीलिंग दीजिए। इसका ये नहीं होता कि लड़ाइयाँ लगा लें घर जाकर, लेकिन गलत चीज़ नहीं माननी। मुझे हमेशा उन औरतों पर अफसोस होता है कि जो इतनी ज़रूरी है कि एक औरत सिर्फ चंद घंटे घर से निकल जाए तो वापस आप भी जाते होंगे तो पता नहीं घर क्या बना होता होगा, और छोटे बच्चे हैं तो शायद अस्तबली बना हो घर। औरत के बगैर घर नहीं चलता, इसमें सच है। अगर मर्द के बगैर चूल्हा नहीं चलता या जेब नहीं इजाज़त देती ना, तो औरत के बगैर घर घर नहीं होता। है वजूद जन से तस्वीर कायनात में रौनक, तो अपनी सौरतपने को कैश कराइए। आप अपने शौहर की मजबूरी हैं, कैश कराइए। जो उनको आपसे चाहिए, आपको भी तो उनसे कुछ चाहिए। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चलने वाले होते हैं। ठीक है, कभी आप पिछली नशीस पे बैठ जाएं, कब? जब उनको गुस्सा आया हो, और जब वो बड़े अच्छे मूड में, तो ज़रा आप भी नखरे करके दिखाया करें। देखिए तो सही, कैसा बैलेंस चलता है ज़िंदगी में। तो इन रिश्तों में ये नहीं है कि बीवी हर वक्त एक पाँव की जूती बनी रहे, और या फिर दूसरी तरफ मर्द बेचारे अपने हिसाब से चले रहे, जो भी होते, नाम नहीं लेना चाहती। असल बात यह है कि रिश्तों को खूबसूरतियों से निभाएं। अब क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस माँ के पास आ गए, और माँ की आंखें ठंडी हो गईं, और कहा कि गमगीन भी ना हो। याद रखिए, आजमाइश बहुत थोड़े दिन की होती है, कभी तो दिनों की भी नहीं होती, कुछ घंटों की होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो मिलता है ना, वो एंडलेस होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है, जन्नत एवर लास्टिंग है। एक तो जन्नत की कोई नेमत किसी आंख ने देख ली ना, उसे महरूम नहीं होगा। दुनिया में भी ऐसे है, सिर्फ चंद दिन सब्र के घूंट भर के अल्लाह की रज़ा पे, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, रदी तो बिल्लाही रब्बन, बस फिर मजे गए। फिर घर बैठ के खाएं, कोई एक दिन काम कर ले या एक महीना काम कर ले, और उसके बाद कहा जब घर बैठ के खा लो। अल्लाह की दी हुई आजमाइशों पे मोमिन का हाल बिल्कुल ये होता है। अल्लाह ना शुक्रियों से बचाए, बेसब्रियों से बचाए। अब बीमार है तो रे, फिर के अल्लाह तूने किया, मैंने तो ऐसे ही रहना है। आप परेशान हैं, आप ऐसे ही रहे, मैंने ऐसे ही रहना है। आपको अल्लाह ने नेमत दी है, ठीक है, नहीं दी तो ना सही। इतने बेनियाज हो जाए कि अल्लाह खुद आके आपसे कहे कि बता इंसान, तुझे मुझसे और क्या चाहिए। एक दफ़ा आप किसी का ट्रस्ट ले लेते हैं ना, तो उसके बाद चाबियाँ भी आपको दे देते हैं घर की। आप अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को बीसियों बार आजमा चुके होंगे, तो असल बात यह है कि अल्लाह का ट्रस्ट लिया जाए। खैर, अब आगे मूसा की जवानी। और तूने एक शख्स को मार डाला, इस पर भी हमने तुझे गम से बचा लिया। गरज हमने तुझे अच्छी तरह आजमा लिया, फिर तो कई साल तक मदियन के लोगों में ठहरा रहा, फिर तकदीर इलाही के मुताबिक है मूसा तू आया, और मैंने तुझे अपनी ख़ास ज़ात के लिए पसंद फरमा लिया। ये था असल में क्राइटीरियन। चीज़ पूरी गल जाए, पक जाए, फिर ही टेस्ट देती है। आजमाइश भी जब पूरी पक के निखरता है ना बंदा, फिर ही खूबसूरत होता है। ये जो जुमले ना, ये छोटे जुमले नहीं है, इसमें आपकी सारी महरूमी है, सारी बीमारियां, सारे गम, सारी परेशानियां, औलादों के सदमे, शौहरों के गम, दोस्तों और भाई बहनों की तरफ से परेशानियां, लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर तो एक सर्टन सेट पे सुम जीना का, फिर हम तुझे ले आए उस क्राइटेरियन पे, वो स्टैंडर्ड जिस पे हम चुनते हैं। हमारा हाल ये कि इससे थोड़ा पीछे ही लुढ़क जाते हैं, शुरू में कुछ इधर और एंड पे कहते हैं बस मेरी बस हो गई, अब मेरे से सब्र नहीं होता, तो ना कीजिए सब्र, चूल्हा बंद कर दीजिए, फिर कच्ची पक्की हांडी खाइए। अल्लाह की नेमतें पाने के लिए पूरा सब्र चाहिए। मूसा ने ये किया, अल्लाह कहते हैं मैंने आपको अपनी ख़ास ज़ात के लिए चुन लिया। अब बताइए, मूसा को अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया, अमेरिका का सदर किसी को अपने लिए चुने, चाइना का सदर या जापान का सदर किसी को अपने लिए चुने, ये बड़ी नेमत है या अल्लाह किसी को अपने लिए चुने? और अगर अल्लाह ने आपको अपने लिए अब चुन लिया, कितनी बड़ी बात है। आप अंसारुल्लाह, और क्या चाहिए? सारी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का आपको अपने काम के लिए चुनना बड़ी बात है। तो अल्लाह जिनको चुनता है, याद रखिए इससे पहले सख्त इम्तिहान होता है। वो एक एक साइज़ देख देख के सिलेक्शन करते हैं ना, ये एक जैसे सारे टमाटर इधर डाल दो, ये छोटे हैं, ये गले हुए, ये कच्चे हैं, ये पक्के हैं, फिर इसकी ये कीमत, इसकी ये सब्जी मंडियों में ये कुछ हो रहा होता है। अल्लाह ने मुझे आपको एक एक को परखना, क्योंकि हम खसिब तो मन तदखुलुल जन्ना। अल्लाह अपने काम करने से पहले ऐसी आंधियाँ चलाता है, ऐसी हवाएं चलाता है, कभी रग़बतों की कभी रहबतों की। कोई नेकी की नीयत करके तो देखिए, फिर जो आपके साथ होगा अल्लाह माफ़ करे, या तो आपकी 10 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बच्चा होने वाला हो जाएगा आपके, या आपकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा जिसके लिए अब 2-3 साल से परेशान थी, या आपकी हज की दरख्वास्त निकल आएगी। ये तो है अच्छी नेमत है। फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं, अब मैं नहीं, अच्छा मैं बिज़ी हूँ, आपका वीज़ा लग जाएगा किसी मुल्क का, चले भाग जाएं, आप क्या नहीं, अब मैं नहीं कर सकती, अब तो मेरे ज़ाती मसाइल शुरू हो गए, मैं फिर से इंशाल्लाह और किसी को फिर कभी, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई गम की खबर आ जाएगी, उलझने, आजमाइशें, पाबंदियाँ, कैद, ये नहीं लोगों की बातें, उधर से उधर। तो अल्लाह ने आपको चुनने से पहले ज़ुलज़िलुज़िलज़ालन शदीदा करना है, ये अल्लाह की सुन्नत है। किसी की दुआएं भी नहीं इसमें आपको काम आएंगी, बस एक दुआ किया करें, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना, कि अल्लाह जो मर्ज़ी आंधी चले लेकिन मेरे कदम ना उखड़े। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना। अब तो अपने भाई समेत मेरी निशानियां हम राह लिए हुए जा, और ख़बरदार मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। यानी अल्लाह के रास्ते के कामों में अब ये नहीं है कि नमाज़ें छूटने लगें, जिक्र छूटने लगे, और चूंकि इतने नेकियों के काम कर रहे हैं तो अब क्या हुआ अगर हम ये नहीं कर रहे तो वो नहीं कर रहे, नहीं, हाथ कामों में और दिल महबूब की तरफ। जिक्र अज़कार मोमिन का हिर्ज़े जान है, काम करते उठते बैठते खुद देखा करिए, सुख में क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ सुन लीजिए, देख सकती हूँ देख लें, पढ़ सकती हूँ पढ़ लूँ, लिख सकती हूँ सोके लिख लूँ, कुछ नहीं कर सकती 2 नफिल पढ़ लेती हूँ। यानी इतना कयस होता है मोमिन के, अपने ग्लोब अपनी घड़ी को इस तरह सेट करता है, अच्छा ये काम यहाँ हो सकता है तो बस ठीक है, अच्छा और कुछ नहीं है ना, मैं सो जाती हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कुरान आपको सिखाता है, और आजकल आप देख ही रहे, सुबह शाम रात दिन में सिर्फ 10-5 मिनट की नींद आपको फ्रेश कर देती है, क्योंकि अल्लाह आपके थोड़े वक्त में थोड़ी चीज़ों में बरकत डाल देता है। मूसा को जब फिरौन के पास भेजा तो क्या कहा, सरकश है तुम क्या करो, खूब बड़के मारना, गुस्सा करना, मुक्के मारना अपने जाके मेज़ पे डाइस पे, ना उसे नरमी से समझाओ, शायद के वो समझ ले या डर जाए। फिरौन जैसे सख्त दिल इंसान के अंदर भी कोई ना कोई पायलट फ्लेम जल रहा होता है, जिसको जस्ट बटन दबाए तो शोला बन जाएगा। अल्लाह हमारी तबलीग में ऐसी जज्बियत और ऐसी कह लीजिए कि पेनिट्रेशन डाल दे कि हल्की सी भी किसी में हिदायत की तड़प है तो वो हमारी वजह से हिदायत पे आ जाए। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमें खौफ है कि कहीं फिरौन हम पर कोई ज्यादती ना करे या अपनी सरकशी में ना भड़ जाए। जवाब मिला कि तुम बिल्कुल खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मुतलकन मीन कम्प्लीटली, और सुनता भी हूँ और देखता भी रहूँगा। तुम इसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार के पैगंबर हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, इनकी सजाएं मौकूफ कर। देखिए सीधा जाके दो टोक मुतालबा, वी वॉन्ट दिस, हमारे यहाँ अल्लाह की पनाह कई महीने साल लग जाते हैं मुतालबे, सड़कों पे आ जाओ, धरने डाल दो, ये कर दो कि जी हमें ये कराना है वो। मूसा ने जाके सीधा पॉइंट दिया कि इनकी सजाएं ख़त्म करो, यानी अपने लॉ को चेंज करो, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और सलामती उसके लिए है जो हिदायत का पाबंद हो जाए। हमारी तरफ वही की गई कि जो झुठलाए या रूगरदानी करे इसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा है, मूसा तुम दोनों का रब कौन है? यानी उसको बड़ी हैरत हुई कि ये कहाँ से आ गया किसी और रब को मानने वाला। जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर एक को इसकी खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई, फिर राह सुझा दी। उसने कहा अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है। यानी उसने इख्तलाफी बात की कि वो पिछले सारे क्या गुमराह थे। फिरौन पता क्या सुनना चाह रहा था कि मूसा एक दफा गए थे वो सारे जहन्नुम में और वो शोर मचा दे, टेररिस्ट टेररिस्ट, देखो तुम्हारे लोगों को ये आग वाला और जहन्नुमी कह रहे। अच्छा था ये दिन अच्छे क्रिकेटर की तरह होता है, किस बॉल पे बल्ला उठाना है नहीं उठाना, किधर जोर की लगानी किधर से हट जाना है, कौन सी बात का जवाब देना है किसकी नहीं देना, ये मूसा से सीख लीजिए। मूसा ने उसकी बात को सुना अनसुना करके क्या कहा? जवाब दिया, इनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में मौजूद है, मुझे नहीं पता, अल्लाह नोस दी बस। कितना प्यारा जवाब है। कोई आपको गुस्से में आके कि तुम्हारा ख्याल मैं आग में जाऊंगा, तो आप आगे चार हदीसें सुनाए जी, क्योंकि आप में ये भी है वो भी है वो भी है, और वैसे मेरी सिफारिश से शायद आपका कोई दर्जा ऊंचा हो जाए, ये देखिए ये हदीस है। ये अंदाज अपनों में नहीं चलता, सॉरी, और शौहरों के साथ तो बिल्कुल नहीं चलता। शौहर सारा कुछ आपसे सीखता लेकिन कभी आपको उस्ताद नहीं मानेगा, लिख के रख ले, क्योंकि उसके अंदर एक अना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर शर्मिंदा किए कह दिया आई डोंट नो, वो रब का काम है, तुम्हें क्या लगा। आज हमारे कहते हैं इन मसलों पे ज़रूर आप बात किया करें ताकि क्लैरिटी आ जाए और लोग भाग जाएं। देखिए हिकमत के बगैर जो तबलीग होती है ना, वो ऐसी है जैसे आप छुरी चला रहे हैं लेकिन वो हैंडल की बजाय उसके कटर से पकड़ कर अपना भी हाथ काटेंगे दूसरों का। यानी हमारे इस वक्त जोश क्या है कि बस एक दफ़ा हमारी बात लोगों को पता लग जाए और ये और वो। तो हमेशा अल्लाह से हिकमत मांगिए, अमल नहीं छोड़ना, अकायद में नरमी नहीं, आपने रूल्स नहीं फर्म, साहबा क्या थे, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हम पढ़ेंगे 26वें पारे में, रुहमाउ बैनहुम के साथ अशिद्दाउल कुफार। आप चिप्स खाते हैं ऊपर से क्रिस्प है लेकिन तोड़ते हैं तो सॉफ्ट, रोटी तोड़ी ऊपर से कितनी क्रिस्प है, मज़ा आ गया, जब मुंह में डाली तो नरम। अब आप कहते हैं ऊपर से रोटी नरम झुली झुली और मुंह में डालें तो दांत भी टूट जाए। आप ऐसी तबलीग करेंगे? आज ऐसी तबलीग ने हक वालों के हक होने के बावजूद उनको बेकार कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यारे अंदाज से पैगाम दिया, हमारा रब वो है जिसने हर एक को खास सूरत शक्ल अनायत फरमाई फिर राह सुझा दी। उसने कहा अच्छा ये तो बताओ अगले जमाने वालों का हाल क्या होना है। जवाब दिए, इनका इल्म मेरे रब के हाँ किताब में मौजूद है, ना तो मेरा रब गलती करता है ना भूलता है, इसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे चलने के रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं, तुम खुद खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ, कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो खूबसूरत सा रकू था, मूसा से तबलीग का तरीका सीखा हमने। हमने देखा कि किसी भी बड़े से बड़े फिरौन के सामने चले जाएं लेकिन अदब और अखलाक नहीं छोड़ना। फिर और क्या सीखा? कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करनी है, अल्लाह तआला के अल बसीर होने को महसूस करना है, अल्लाह की याद में सुस्ती नहीं करनी, नरम बात करनी है, नसीहत कबूल करवाने की कोशिश करनी है, मनवाना नहीं है, और हिदायत की पैरवी करनी है। और अल्लाह करे कि मूसा अलैहिस्सलाम वाला अंदाज हमें मिल जाए, फिर कोई बात माने के ना माने। देखिए कितना प्यारा अंदाज था, तो क्या फिरौन माना? नहीं माना। तो क्या पता चला? जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना। आगे देखिए रुकू 12 है, 55 से 76, 76 तक, अल्लाह की निशानियाँ। अब यहाँ कायनात की कुछ चीज़ें, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इस ज़मीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापस लौट आएंगे, फिर इसी से दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियाँ दिखा दी लेकिन फिर भी इसने झुटलाया और इनकार किया। और क्या कहा उसने? ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? यानी आप देखिए मूसा बेचारों ने क्या बात की और ये क्या समझ रहा है, उल्टे मानी पहनाना, ये हर तौर के फिरौनों का दस्तूर रहा। अच्छा हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू ज़रूर लाएंगे, बस तो हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका खिलाफ करें और ना तू, साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और यह कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। बस फिरौन वापस लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए और फिर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी शामत आ चुकी, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि तुम्हें अजाबों से मिलिया मेट कर दे, याद रखो वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात घड़ी। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और चुपके चुपके मशवरा करने लगे। कहने लगे ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद करें। तरीक़तुल्मुसला, देखिए किसको अपना मिसाली कल्चर कह रहा है, जिस पे अल्लाह की पकड़ आ रही, जिस पे समंदर में डुबोया जाएगा। इसे पता चलता है कि अपने तरीकों को अच्छा कहने वाले ज़रूरी नहीं कि अच्छे भी हों। और दूसरा देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और अपने साथियों पे इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। तो तुम भी अपना कोई दाव उठा ना रखो, फिर सफबंदी करके आओ। जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। कहने लगे मूसा या तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं तुम ही पहले डालो, यानी टेक योर टर्न। इससे आपको मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कितना एतमाद था उनको कि मैं शुरू में खेलूं या बाद में खेलूं जीतूंगा मैं ही। आज हम क्या कहते हैं, जो पहले सुना ले ना वो सच्चा हो जाता है। यानी सास बहू की लड़ाई हो गई, मियाँ साहब आ गए रात को। अब बहू कह रही है मैं जल्दी से मियाँ को पहले सुनाऊं कि अम्मा कान न भर दें। और अम्मा बेचारी भी कहती हैं कि ये बहू की बातें ना सुने, ज़रा मैं बता दूं। आराम से बैठिए, अगर आपने ज्यादती नहीं की अपनी बहू पे या अगर आपने ज्यादती नहीं की अपनी सास पे, तो आप पहले सुना दें या बाद में सुना दें, हक नहीं बदला करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान से कहा तुम पहले डाल लो, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, अब तो मूसा को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ इनके जादू के ज़ोर से दौड़ भाग रही हैं। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े, पिछली नशिस्त पे बैठने को तैयार है जादूगर अब, क्योंकि दिल बदल गया। और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। फिरौन कहने लगा क्या मेरी इजाज़त से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए। फिरौन पिछली नशिस्त पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है। सुन लो मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा, और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज्यादा सख्त और देर पा है। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी। इस पे दुआ करे अल्लाह मज्जाल न मिन हो। देखिए इतना तस्करा क्यों है इन जादूगरों का, ये दलील के आगे झुके थे और खुद पीछे चले गए। ये जो पिछली नशीस पे बैठना होता है ना, ये हमेशा जरूरी नहीं कि कुर्सियों में से उठ के पीछे बैठ गए या इंसानों में से इधर से उधर हो गए। दलील आज हमारी उम्मत में इतने फिरके जो है ना, और ख़ास तौर पे जो फोर्स एक्ट्स हैं उस पे अगर आज इस उसूल को बना ले जिसकी दलील जिस मामले में सही मजबूत स्ट्रॉन्ग जमहूर उलमा, बस वो मान लूंगी, ख़त्म। सारे ही हक पे थे, सारे ही ठीक थे, लेकिन आज जिस मसले में एक इमाम की राय ठीक है वो मसले में मैं वो हूँ, दूसरे में उनके, और वो खुद भी यही थे। इशारा इसलिए दिया है कि ये हमारे कल्चर में दलील के आगे नहीं झुकते। दलील दलील दलील, आप 10वां 12वां कर चुके हैं इस मौजू पे, दलील के आगे झुके हैं। माँ बाप ने जो सिखाया जो किया वो उस वक्त का था, कुरान पढ़कर आपका जहन खुलता जा रहा है। आपको बता दिया गया कि इस दवा में ये डला है, ये डिस्प्रीन है, इसमें इतनी चीज़ें इतनी, बस मान लीजिए। अगर उस पर डब्बी में लिखा है तो आप खा लें, अगर आपको एलर्जी है तो उसको छोड़ दें। मसला जो आज हमारी उम्मत का है ना, वो दलील के आगे में अपनी मर्जियाँ, कहीं हदीस के मुकाबले में अकवाल, उसका कौल उसकी बात। तो कीलो काल का नाम आज हमने इस्लाम रख दिया। फिर क्या हुआ, यानी दलील के आगे भी झुके हैं और अल्लाह के आगे भी झुक रहे हैं। और इस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया, अब तू जो कुछ करने वाला कर गुजर। जरूरत, अगर मेरे पास किसी काम की दलील है ना तो मुझे कोई डर नहीं, मैं कहूँगी आइए ले चले मुझे, आप जिस फॉर्म में ले जाएंगे मैं जाने को तैयार हूँ, आप मुझे किसी कोर्ट में खड़ा कर दे मैं सच्ची हूँ। देखिए ना, जिसने जुर्म नहीं किया होता वो तो जाएगा ना कोर्ट में, जिसने जुर्म किया वो कहेगा नहीं इधर ही मुक्का कर दो। दलील वाला बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और तबलीग करने से पहले अपने हर अमल की दलील ले लीजिए, लोगों को भी दीजिए अपने ऊपर लीजिए। जो काम कर रही हो दलील पे कर रही हो, जिस काम को नहीं कर रही उसकी दलील है। हम लोगों की खुशी ना खुशी के लिए कई जायज़ काम छोड़े होते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग ये कहेंगे वो करेंगे, और कई बातें जिस पे दलील है कि ये हराम है या गलत है या नाफरमानी है, हम नहीं रुकते क्या करें कि लोग ना नाराज हो जाएं। तो बड़ी जरूरत है यहाँ बैठना। देखिए ये मूसा इस वक्त एक मुबल्लिग है, हम में से हर एक जब अल्लाह की बात लोगों के सामने रखे, कॉन्फिडेंट होकर बैठे, अपनी बेअमली को दूसरों के सामने छुपाने के लिए दलील का अगर आपने इनकार किया तो लिख लें कि आपके नसीब में पिछली नशीस पे बैठना। अल्लाह ने एक इस किताब की एक हिफाजत की हुई है कि जो गलत चीज़ को प्रमोट करते हैं ना, कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं। कितने फिरके गए इस पे, आज हमारी उम्मत में कितने झूठे दावेदार हैं, एक एक करके सब पीछे हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, हम वही जीतेगा जिसके पास दलील है। मैं एक मिसाल दे देती हूँ, रात को आप नाइट बल्ब चलाते हैं, थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में बड़ी अच्छी रोशनी आ जाती है, हत्ता कि आप टाइम भी देख लें, घड़ी देख लें, फ़ोन देख लें, कुछ भी कर लें, उठ के जा रहे हैं तो भी ठीक है। सुबह हुई, आप भूल गए कि आपको नाइट बल्ब बंद करना था, और हम इसे अक्सर ही भूलते हैं। अक्सर लाइटें बेकार चल रही होती हैं हमारे घरों की, पंखे बेकार चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। अच्छा, अब वही कमरा जिसमें रात को नाइट बल्ब की वजह से खूबसूरत रोशनी थी, अब वो दिख ही नहीं रहा कि जला हुआ है। क्या हुआ? लिखिए, सूरज की दलील सामने आ गई कि वो बड़ा है इस नाइट बल्ब से। इवन सादे बल्ब भी चल रहे हो तो नहीं पता चलते सनलाइट में। हमारे कल्चर में ये बड़ा मशहूर एक प्रोवर्ब है, अंधों में काना राजा। कौन होता है? जिसके इर्द गिर्द सारे अंधे हों, तो किसी की एक भी आँख होगी तो अच्छा ही होगा ना। कभी कभी हम अंधों में काने राजे वाली कैफियत पे होते हैं, और लोग हमारी तारीफें भी फिर बड़ी करते हैं, फिर हमें बिगाड़ते भी बहुत हैं, फिर हमें सर पे भी बहुत चढ़ाते हैं। और जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जो पढ़ाती हैं वो तो है ही नहीं, आप जैसी बात तो कभी सुनी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को सुना ही नहीं होता, किसी से पढ़ा ही नहीं होता, वो किसी की स्टूडेंट बनी नहीं होती। अब हर उस्ताद को मेरे जैसों को ही कुछ चाहने वाले मिल जाते हैं, कुछ तारीफें करने वाले, कुछ मोहब्बतें करने वाले, और सोन, क्योंकि उन्होंने किसी से अच्छी बात आज तक सुनी नहीं। ये वही बात है ना, जिसने अच्छा खाना खाया नहीं वो हर बेकार चीज़ पे कहते हैं क्या मज़े का खाना है ना। ऐसे लोग होते हैं, टेस्ट ही नहीं। एक अंकल थे हमारे, उनके टेस्ट बड्स ख़राब थे क्योंकि चाय और सिगरेट बहुत पीते थे, तो हर बेकार चीज़ की वो तारीफ़ करते थे। हद तक कि उनकी बेगम उनको कद्दू की जगह बैंगन और बैंगन की जगह कद्दू खिला देती थी, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाते थे। और बेगम जब बैंगन पकाती तो क्या करती, उसको घोटते थी और मियाँ साहब को कहती कद्दू खा लो, वो खा जाते। और अगर कभी बता देंगे ये कद्दू है तो वो बैंगन है, वो नहीं खाएंगे। नहीं समझ आई? अच्छे करते हैं। वल्लाही ये आयतें मुझे हमेशा इमोशनल कर देती हैं कि हम स्टैंडर्ड क्यों लो करते हैं अपना और लोगों का। लोगों को जब अच्छी चीज़ दिखेगी वो ज़रूर आपको छोड़ेंगे। मक्का के अंदर तो चले जो मामला था, मदीना के यहूद ने कितनी कोशिश की कि नबी सल्लम को लोग ना सुने, लोग उनके पास ना आए, हसद मिनन इंदी अनफुसीम पहले पारे में आ गया था। तो क्या फिर आज 2 बिलियन लोग इस बात की दलील नहीं कि दलील दलील नबी की दलील थी, नबी सच्चे थे, नबी अच्छे थे, और यहूद ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई थी। वही बात फिर बार बार मुंह पे आ रही है, अंधों में काने राजे थे, क्योंकि मक्का और मदीना के आम लोग अनपढ़ थे, बिल्कुल नहीं पता। मदीना के लोग जमींदार थे और मक्का के लोग तो वैसे ही हरम के साथ जोड़कर बड़े खुश थे अपने आप को, और वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग जब उनमें आए तो बड़े बहुत बड़े हो गए। लोगों ने कहा वाह आप जैसा कोई नहीं। जिस दिन तलाउ बदरु अलैना कद सूरज चमका, क्या आज हम पे वो चांद आ गया कि जिसकी 14वीं चांद की रोशनी ने पूरी चीज़ों को मुनव्वर किया। एक एक करके एक एक वो नाइट बल्ब बुझने लगा मदीना के लोगों का, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग जुड़ने लगे। कल भी यही था, आज भी यही होगा। मदई लाख बुरा चाहे पर क्या होता है, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। तो कभी भी आप नाइट बल्ब मेरी सूरज की मिसाल ना भूलिएगा, अपनी औकात भी याद रखें। हम सबको अपना असल पता होता और पता रहना चाहिए। तो सारी बात का खुलासा कि जादूगरों का ईमान बोला, और आप नोट करें जहाँ ईमान की बात आती है वहाँ हमारी बात लंबी हो जाती है। मैं आपको कभी भी आम क्लासों में भी मेरी आदत है, मैं साइड की चीज़ों पर नहीं उलझती। ठीक है, इट्स ओके, पॉसिबल है, इट्स ओके, ये भी है, ये भी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लोग उन पर उलझ उलझा के उम्मत को तोड़ देते हैं। हम आज ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे हमने अपने आप को छोटी छोटी कश्तियों में सवार किया हुआ है, और तूफान आएगा तो सारी डूबेंगी। हाँ, अगर एक बड़ा जहाज होगा तो वो रिजिस्ट कर जाएगा। इस वक्त उम्मत को ज़रूरत है कि दलील को मान लो, और अल्लाह ने फिर इनका नाम कुरान में दे दिया। क्या किया? कितनी नमाज़ें पढ़ी थी जादूगरों ने, कितने रोज़े रखे, कितनी तस्बीह नमाज़ें, कुछ भी तो नहीं। लेकिन दलील के आगे खड़े हो गए। ये है आपका मोल। अल्लाह उस बंदे की बड़ी कदर करता है जो दलील को मान जाता है। खैर, डर भी नहीं है, अब जुरत भी बहुत आ गई। कहने लगे जो करना है कर ले, तो जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनिया की जिंदगी ही में चलाएगा। हम इस उम्मीद पर अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वो हमारी खताएं माफ़ फरमा दे, और ख़ास कर जादूगरी का गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया। इसको नोट करें, देवर फोर्स टू बी मेजिशन। अल्लाह ही बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर आया, बड़ी रखी कहते हैं, अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा। इसके लिए दोजख है जहाँ ना मौत होगी ना जिंदगी। कौन है हमें से जो क्रिमिनल बन के जाना चाहता है? एक भी नहीं। इसके बरअक्स जो भी इसके पास ईमानदार होकर हाजिर होगा और इसने अमाल भी नेक किए होंगे, इसके लिए बुलंद व बाला दर्जे हैं और हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक है। अभी आपने जल्दी में नोट नहीं किया होगा, लेकिन सूरत आह में तज़क्का का लफ्ज़ बहुत है, तस्किया, पाकी। अब अल्लाह चाहते हैं कि मंदर बार से साफ़ हो जाएं। बहुत दिन हो गए कुरान सुनते हुए, अब ये तस्किया वाली सूरतें और पारे हैं। क्या सीखा? अल्लाह पे झूठ नहीं बांधना, आपस में इख्तलाफ नहीं करना, अल्लाह से तौबा करके बख्शिश की उम्मीद रखनी है, नेक अमाल पर अच्छे बदले की उम्मीद रखनी है, पाकीज़गी इख्तियार करने से जन्नत की उम्मीद रखना है, और अल्लाह वालों के खिलाफ महाजराई नहीं करनी। फिरौन ने मूसा के खिलाफ महाजराई की, अल्लाह ने उसका नुकसान उसी को दे दिया। अब मूसा की ज़िंदगी कहाँ पे खड़ी है? पहले बचपन गुजर गया, हम पढ़ चुके, माँ की गोद में वापस आ गए, गुजर गया, फिर जवान हुए, कत्ल हुआ, गुजर गया, मिस्र से मदियन गए, गुजर गया, वहाँ 10 साल रहकर वापस आए, गुजर गया, फिर वहाँ नबुवत का ताज सर पे रखा, यद बैजा और असा, गुजर गया। आके मूसा ने फिरौन को तबलीग की, हुज्जत तमाम की। आपको 2-3 रुकू में ऐसे लगता है ये 1-2 दिन में हो गया होगा, ऐसा नहीं है, ये साल हर साल की रवायतें। उसके बाद जादूगरों से मुकाबला भी करा दिया, इतमाम में हुज्जत हो गया।